ओम शांति। हम सभी आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी का जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं। आपकी क्लास का विषय ही है बंधनों से मुक्ति की युक्ति। आज हर व्यक्ति चाहता ही है निर्बंधन हो। बंधन किसी को भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन जाने अनजाने हम कितने बंधनों में फंसे हुए होते हैं, परंतु उसके निवारण का पता नहीं होता। तो आदरणीय सविता दीदी जी हमें सुनाएंगे किन से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं। आपका परिचय है कि आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई की, प्रारंभ में उदयपुर, कोटा, डूंगरपुर में अपनी सेवाएं दी। 1990 में आपने मुख्यालय पांडव भवन डिस्पेंसरी में अपनी सेवाएं दी और 1991 में आप ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू में चिकित्सा अधिकारी के रूप में आपकी नियुक्ति हुई 2000 तक। 2000 से 2007 तक पूर्व मुख्य प्रशासिका आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी की व्यक्तिगत चिकित्सक एवं सहायक रही। 1974 से आप ज्ञान में आ गई और 1989 में आप पूर्ण रूपेण समर्पित हो गई। वर्तमान समय आप महिला विंग की राष्ट्रीय संयोजिका है, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका। आबू एवं मानसरोवर परिसर में होने वाले कार्यक्रमों की आप निर्देशिका हैं। देश विदेश की सेवाएं यूके, यूएस, रूस, जापान, चीन, हांगकांग, यूएई, वेनेजुएला, कैरिबियन, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि अनेक देशों में जाकर एक स्वस्थ जीवन शैली एवं राजयोग मेडिटेशन से सभी को अवगत कराया। 2001 में अखिल भारतीय महिला आध्यात्मिक सशक्तिकरण अभियान में भाग लिया। 2014 में आपने राष्ट्रीय स्तर के अभियान नारी सुरक्षा हमारी सुरक्षा का नेतृत्व किया। 2016-17 में आपने राष्ट्रीय अभियान बेटी बचाओ सशक्त बनाओ का नेतृत्व कर बालिकाओं को शिक्षित और सशक्त बनाने में अपना योगदान दिया। मेडिकल विंग द्वारा वर्ष 2009 में मेरा भारत स्वस्थ भारत अभियान में देहरादून से माउंट आबू तक आपने मुख्य वक्ता के रूप में अपनी सेवाएं दी। राजयोग शिक्षिका के साथ साथ तनाव प्रबंधन, स्वस्थ और प्रसन्न रहने की कला, क्रोध प्रबंधन, सकारात्मक चिंतन आदि विषयों पर आप व्याख्यान देती हैं। आपने अनेक कंपनियों इफ्को, बिरला सीमेंट और इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में आपने अनेक व्याख्यान दिए। सभी समाज सेवी संस्थाएं, नेवी, जेलों आदि में 100 से भी अधिक वक्तव्य दिया है। आपने ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा आयोजित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया। वर्ष 2023 में आपको ग्लोबल अलायंस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट संस्था यूएस द्वारा वुमेन ऑफ एक्सेलेंस अवार्ड प्रदान किया गया। ताली बजाएं सब जोर से, दीदी को इतना बड़ा अवार्ड मिला। आपके लिए यदि कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, अपनी हिम्मत से उड़ने के काबिल हैं हम, अपनी हिम्मत से उड़ने के काबिल हैं हम, मौसम की हवाओं के सहारे नहीं, रूख हवाओं के मोड़े हैं हमने, हम फरिश्ते कभी हारे नहीं, हम फरिश्ते कभी हारे नहीं। आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति। आप सभी पहले अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एक मिनट के लिए। अपने हाथ ऊपर करेंगे, थोड़ा स्ट्रेच करें थोड़ा। एक दो की तरफ देखें, मुस्कुराएं। हाँ, अभी सीधे हो जाइए और बैठिए। लंबे समय से बैठे हैं हॉल में तो थोड़ा थक जाते हैं, कुछ एक को नींद भी आने लगती है। तो हमारा विषय है बंधनों से मुक्ति की युक्ति। तो हम सभी को, कोई को भी बंधन पसंद नहीं होता है, मुक्ति चाहते हैं। क्योंकि बंधन, क्यों बंधन पसंद नहीं होता है? क्योंकि बंधन दुख देता है। तो बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे द्वापर युग से रावण की जेल में आ गए, तो उस लौकिक जेल में भी कोई रहना नहीं चाहता है, जेल से छूटना चाहते हैं। तो रावण के 5 विकारों की जेल, उसके कारण ही आज अनेक बंधनों में आत्माएं बंधी हुई हैं। पहली बात तो घर ग्रस्त में रहते हैं, तो घर ग्रस्त, पहले ग्रस्त आश्रम था और आज वो ग्रस्त जंजाल बन चुका है। हमारा एक चित्र बना हुआ है ना, वो ग्रस्ती को कितने बंधन है, कितने बंधनों की रस्सियों में ग्रस्ती जकड़ा हुआ है, तो कितने प्रकार के बोझ रहते हैं उसके ऊपर। अनेक जिम्मेवारियां हैं, अनेक संबंध हैं, अनेक प्रकार के कर्म करने हैं। लेकिन बाबा जब आए तो बाबा ने हमें क्या बना दिया ना? एक हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र देखते हैं, जो डबल ताजधारी हैं, जिनका चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ हर्षित चित्त है, दिव्य है। और एक कलयुगी गृहस्थी का चित्र है, जो सिर पर अनेक प्रकार के बोझ के टोकरे रखे हुए हैं। कौन सा चित्र अच्छा लगता है? कौन सा अच्छा लगता है? तो हम सब इन बंधनों से मुक्त होकर श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना चाहते हैं। तो बंधन मुक्त स्थिति कर्मातीत स्थिति है। तो कौन कौन से बंधन हैं जिन बंधनों से हमें मुक्त होना है? और सबसे सहज विधि बाबा ने जो हमें दी है वो है ज्ञान। जो सत्य ज्ञान हमें मिला है, वो ज्ञान हमें बंधनों से मुक्त करता है। पहले पहले हमें स्वयं का ज्ञान मिला, तो जो आत्मा का ज्ञान है वो हमें देह के बंधन से मुक्त करता है। तो जितना हम देही स्थिति में रहते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, क्योंकि देह से देह अभिमान होता है और देह अभिमान विकारों की जड़ है। देह अभिमान से ही विकारों की शुरुआत होती है। तो अगर हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, आत्मिक स्मृति में रहते हैं, तो अपने आप हमारा जो देह के विकारों का बंधन है वो भी हमारा छूटता है। तो कितना हमने ये पाठ पक्का किया है आत्मिक स्मृति का? बाबा कहता है ये इतना फास्ट है, जैसे आज विज्ञान के युग में हम एक स्विच ऑन करते हैं, कितने सेकंड में अंधेरा प्रकाश में बदल जाता है, या जो भी हम परिवर्तन करना चाहें, गर्मी को ठंडक में लाना चाहें, ठंडक को, ठंडे वातावरण को गर्म करना चाहें, तो कितना समय लगता है? कितना समय लगता है एक स्विच ऑन करना? वो एक सेकंड। तो जब साइंस की स्पीड इतनी तेज है, तो ऐसे ही हमारी साइलेंस की स्पीड है कि एक सेकंड में हम इस देह से न्यारे हो सकते हैं, एक सेकंड में हम इस देह के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, एक सेकंड में हम बाबा के पास परम धाम में अपने मन को ले जा सकते हैं, तो इस संसार की बातों से न्यारे हो सकते हैं। तो इतना सहज हम अनुभव करते हैं। फिर देह के साथ साथ हमारे देह के संबंध हैं, और देह के संबंध दो प्रकार के हैं। एक है हमारे लौकिक और अलौकिक संबंध, और दूसरा है देह के कर्मेंद्रियों का संबंध। देह के साथ देह की कर्मेंद्रियां भी हैं। तो जो हमारे लौकिक अलौकिक संबंध हैं, वो संबंध हैं तो सुख देते हैं, लेकिन वो संबंध बंधन का रूप ले लेते हैं विकारों के कारण। कैसे बंधन का रूप लेते हैं? वैसे तो जो संबंध है वो हमें स्नेह देने वाले होते हैं, सहारा देने वाले होते हैं, प्राप्ति कराने वाले होते हैं, और इसीलिए उनमें हमारा मोह हो जाता है। तो जहां मोह है वो बंधन है, और जहां हमारा रूहानी स्नेह है, आत्मिक स्नेह है, वो संबंध है। तो लौकिक जीवन में ये जो हमारे सहारे हैं, इनको हम परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं कि हमारा मोह, हमारी रग उनमें नहीं जानी चाहिए। कईयों के साथ ऐसा भी होता है कि लौकिक संबंधी विघ्न रूप बन जाते हैं, वो भी बंधन लगता है। ज्ञान में हम चले, हमारे संबंधी नहीं चले, पति ज्ञान में नहीं चले या पत्नी ज्ञान में नहीं चली, हाँ, या फिर जो भी है, सास ससुर या और संबंधी बच्चे हैं, तो वो कोई ना कोई बंधन डालते रहते हैं। जितना हम पुरुषार्थ करना चाहते हैं नहीं कर सकते उनके कारण, या जो सेवा हम करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं उनके कारण, तो हमें क्या लगता है? इतना बंधन है ना, सब सहयोगी होते तो कितना अच्छा होता, क्यों बाबा ड्रामा में मेरा ऐसा पार्ट है, या क्यों ये सब मेरे सहयोगी नहीं है। तो अगर ये संकल्प हमारा चलता है उन आत्माओं के प्रति, कई बार हमारे मन में उनके प्रति सूक्ष्म घृणा भाव आ जाता है, फिर वो चाहे लौकिक हैं चाहे अलौकिक हैं। अलौकिक में भी यही बातें, कोई भी आत्मा हमारे लिए विघ्न रूप हो सकती है, अलौकिक में भी। अलौकिक माना जो हमारा ईश्वरीय परिवार है, उसमें भी जिनसे हमारे संस्कार स्वभाव नहीं मिल रहे, और वो आत्मा मेरे लिए पुरुषार्थ में विघ्न रूप बनती है या सेवा में विघ्न रूप बनती है, तो अगर उनके प्रति कहां भी मेरे व्यर्थ संकल्प चलते हैं, नेगेटिव संकल्प चलते हैं, ये ऐसे क्यों करते हैं, ये ऐसे क्यों चलते हैं, तो क्या कहेंगे? क्या हो गया? वो बंधन हो गया। क्योंकि उस आत्मा को देखते ही हम दुखी हो जाते हैं, उस आत्मा को देखते ही हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन ऐसी आत्माओं के संबंध संपर्क में रहते हुए भी, क्योंकि वो आत्माएं हमारे समीप ही होती हैं, जिन भी आत्माओं के साथ हमारा हिसाब किताब होता है वो हमारे समीप ही होती हैं, क्योंकि उनको पूरा करना है। जो दूर वाले हैं उनसे तो हम हमेशा प्यार से ही बात करते हैं। एक कहावत भी है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तो दूर वालों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो तो थोड़ा समय ही हमें मिलते हैं। लेकिन जो हमारे ये समीप की आत्माएं हैं, चाहे वो लौकिक में हैं, परिवार में हैं, चाहे वो अलौकिक में हैं, तो अगर उनके प्रति ऐसे भाव हमारे जाते हैं, तो ये मनसा बंधन माना संकल्प भी, संकल्प का झुकाव मेरा उस आत्मा की तरफ रहता है, यानी उसके प्रति मेरे मन में कोई ना कोई संकल्प चलते रहते हैं, विरोधी संकल्प जिसको हम कहते हैं, वो उस आत्मा के प्रति चलते रहते हैं, और कई बार उसके कारण मेरा योग भी नहीं लगता है बाबा से, क्योंकि योग में बैठेंगे तो भी वो आत्मा याद आएगी। ऐसे बंधन को काटने की कैंची है। इन बंधनों का सामना तो हम करते ही है ना, तो कैसे काटेंगे उसे, हम सबको पता है। सदा उस आत्मा के प्रति शुभ भावना हो, सदा प्यार की भावना हो, रहम की भावना हो, हमारी सद्भावना कम ना हो। तो अगर मेरी वो सद्भावना बनी रहती है तो जन्मों का भी हिसाब किताब होगा तो खत्म हो जाएगा, और अगर मैं भी उसी की तरह उन्हीं संकल्पों में चली जाती हूं तो मैंने अपने हिसाब किताब को और बढ़ा लिया। तो कर्म बंधन को काटा नहीं, अभी हमें कर्मातीत बनना है, तो ये कर्म के हिसाब किताब हमें समाप्त करने हैं, तो ये तो हमारे लिए आने ही हैं। हम जहां भी हैं, कई बार सोचते हैं ना कि ये चला जाए या मैं चली जाऊं, वो हमारा स्थान ही बदल जाए। तो बाबा कहता है ठीक है, आपने स्थान बदल लिया, वहां कोई दूसरा होगा, हिसाब किताब चुकतू होना है तो होना ही है, परिवर्तन मुझे करना है। तो ये अपनी वृत्ति और भाव का परिवर्तन संबंधों में हमारा जितना होगा उतना हम कर्म संबंध में आएंगे, वो हमें बंधन अनुभव नहीं होगा। ऐसे ही अलौकिक परिवार में भी कई बार हम देखते हैं लगाव झुकाव में आ जाते हैं, यानी प्रभावित हो जाते हैं गुणों से, विशेषताओं से, वो हमें स्नेह देते हैं, सहयोग देते हैं, सहारा देते हैं, या ऐसी सेवा माना ऐसी प्राप्ति होती है, हमें सेवा के सहयोगी होते हैं, कई कारण बनते हैं। और फिर धीरे धीरे उनके लगाव में बुद्धि आ जाती है, तो बाबा कहता है वो विपरीत हिसाब किताब है, और ये एक्स्ट्रा स्नेह एक्स्ट्रा झुकाव किसी भी आत्मा के प्रति है तो ये भी कर्म बंधन है। क्योंकि ऐसी आत्मा भी जब भी हमारे लिए कोई मुश्किल होगी, हमारे जीवन में कोई उलझन होगी, तो वो आत्मा मुझे याद आएगी जो मुझे सहारा देती है, बाबा याद नहीं आएगा। और फिर सोचते हैं बाबा तो निराकार है, बाबा तो आकारी है, साकार में कोई तो चाहिए, तो अल्पकाल का सहारा लेते हैं ना हम, थोड़े समय से आत्मा का सहारा तो मिलता है, तो कोई तो दिल लेने वाला हो, किसी को तो अपना दिल हल्का कर सके हम। तो बाबा कहता है अगर मैंने किसी को भी अपना सहारा बनाया, बाबा किनारे हो जाता है, क्योंकि संगम युग में बाबा से हमारे सर्व संबंध हैं, और बाबा ने खुद ऑफर किया है कि बाबा से हम सर्व संबंधों का अनुभव करें, एक बाबा दूसरा ना कोई, ये अनुभूति होनी चाहिए हमारी। बाकी सब आत्माओं से जो भी हमारे संबंध हैं, वो संबंध सेवा के संबंध हैं। कर्म बंधन को काटने का सबसे सहज विधि बाबा ने बताई, सर्व संबंध बाबा से अनुभव करने हैं, बाबा ही मेरा संसार है। तो अगर हमने किसी भी आत्मा को किसी भी संबंध से सहारा बनाया, तो फिर लेन देन का हमारा हिसाब किताब बनता है, किसी ने दिया किसी ने लिया, तो कर्मों की गुह्य गति के अनुसार फिर हमारे ऊपर वो बोझ, आत्मा पर वो बोझ होता है, और योग में वो भी विघन रूप बनता है। योग में जो संपूर्ण स्थिति का हमें अनुभव होना चाहिए, बाबा से जो प्यार का अनुभव होना चाहिए, जो शक्तियों का अनुभव होना चाहिए, जो अतींद्रिय सुख का अनुभव होना चाहिए, वो अनुभव हम नहीं कर पाते, और हमारी शिकायत होती है योग लगता नहीं, योग में अनुभव होता नहीं। तो क्यों अनुभव नहीं हो रहा है? क्योंकि बुद्धि का योग आत्माओं से लगा हुआ है, बाबा से नहीं। तो बाबा कहते हैं जब भक्ति में भी भगवान अनुभव कराते रहे भक्तों को, तो आप तो मेरे डायरेक्ट बच्चे हो, तो ऐसा क्यों समझते हो शिव बाबा निराकार है और आकार है? अगर आपको पक्का निश्चय है और अनुभव है ना, सर्व संबंध सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है, समझ की बात नहीं है, लेकिन अनुभव अगर हम करते हैं बाबा से, तो समय पर आपने कहा दिल से मेरा बाबा, तो बाबा आपके लिए हुजूर हाजिर है, कहते हैं बाबा नहीं कहते। तो कोई भी हमारी आवश्यकता है, मुश्किल है, हमें बाबा की मदद की जरूरत है, बस बाबा को कहा और बाबा हमें तुरंत वो अनुभव कराते हैं, चाहे वो शक्ति मिल जाएगी, हमारे अंदर हिम्मत आ जाएगी, या कोई आत्मा निमित्त बन जाएगी और हमें लगेगा ही नहीं कि हमें किसी मनुष्य के सहारे की जरूरत है। किसी को ऐसा अनुभव है, बाबा ऐसा अनुभव कराता है तो हाथ उठाओ। देखो कितने मेजॉरिटी भाई बहने हाथ उठा रहे। तो फिर हम भले गृहस्थी में रहते हैं, संबंधों में रहते हैं, मेरा पति है, मेरा संबंधों में ही मेरा मेरा होता है, नहीं मेरे मेरे का ही बंधन है और यही ज्यादा मोह पैदा करता है। तो जहां ये मेरा मेरा है, बाबा कहता है उन सब को तेरा कर दो। गृहस्थी में हमें ट्रस्टी बनकर रहना है, तो ये मेरे नहीं है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, किसी को छोड़ा नहीं। तो बाबा हमसे छुड़वाता नहीं है, लेकिन परिवर्तन किया, लौकिक को भी अलौकिक में परिवर्तन कर दिया कि मेरे नहीं बाबा के बच्चे हैं और बाबा ने मुझे इनकी सेवा के लिए जिम्मेवार बनाया और वो जिम्मेवारी भी बाबा की है, मेरी जिम्मेवारी नहीं। कौन जिम्मेवार है? तो हम निश्चिंत होकर अपने कर्म करते हैं, हम कोई उनकी चिंता नहीं कर रहे होते या उनका कोई बोझ हमें नहीं लगता। करण करावनहार बाबा हैं, बाबा करा रहा है और हम कर रहे हैं। और यहाँ पर बाबा हमें ये भी कहते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है, तीनों कालों की समझ दी है, ज्ञान हमें मुक्त करता है, तो हमें समझ है हर एक आत्मा का पार्ट है। और वैसे भी हम जिनको अपना समझते हैं ऐसे होता है ना कि दुनिया में हम समझते हैं कि ये मेरा सहारा है, मैं इनका सहारा हूँ, तो सच में आज के कलयुगी संबंध तो सब स्वार्थ के संबंध हैं। जब तक स्वार्थ पूरा होता है तब तक वो हमारे हैं, जब स्वार्थ खत्म हो गया तब वो आपको पूछते ही नहीं है। आजकल बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप घर में रह जाते हैं और बच्चे जो हैं वो जहाँ भी उनका कैरियर होता है, जहाँ उनको ज़्यादा सक्सेस मिलती है वहाँ वो अपना भविष्य बनाते हैं। तो ऐसे ही एक कहानी के रूप में कथा आती है कि एक बार एक युवा था और वो एक सन्यासी आए थे उनके गांव में और वो प्रवचन कर रहे थे, तो उसने वो सुना प्रवचन तो उसको बहुत अच्छा लगा और उसके पहले से भी थोड़े संस्कार थे वैरागी के, तो जब उसने वो प्रवचन सुना तो उसके मन में बहुत तीव्र ये इच्छा हुई कि मैं भी इनके जैसा बन जाऊं, सन्यासी बन जाऊं, इनके साथ ही चला जाऊं। लेकिन फिर उसके मन में विचार आया कि मेरी बूढ़ी माँ है, अब मेरे पिताजी हैं नहीं, तो मेरी माँ के लिए तो मैं ही सहारा हूँ, तो उसका क्या होगा, तो मैं नहीं छोड़ सकूंगा। तो उसने अपने मन की बात, जब ये पूरा हो गया उनकी कथा, तो उसने अपने मन की बात उन सन्यासी को कही कि मेरा मन है कि मैं सन्यासी बनूं, लेकिन मेरे को अपनी माँ का ख्याल आता है और मेरी माँ मेरे से बहुत प्यार भी करती है। तो उसने कहा कि तुम्हारी माँ का जो प्यार है वो प्यार क्योंकि तुम उनका अभी सहारा हो इसीलिए वो प्यार है, अगर तुम नहीं रहोगे तो वो कोई और सहारा ढूंढ लेगी। ऐसा नहीं है कि तुम ही उसकी मतलब परवरिश कर सकते हो या तुम ही उसकी देखभाल कर सकते हो। उसने कहा मेरी एक बहन भी है, वो शादीशुदा है, वो अपने घर में रहती है। तो उसने कहा कि मैं तुमको दिखा सकता हूँ, है ना, हम एक युक्ति करते हैं। तो उसने कहा कि तुम अपने घर में जाना, उसने कहा मैं तुमको प्राणायाम सिखाता हूँ और वो प्राणायाम में अपनी सांस को हम रोक सकते हैं, तो थोड़ा समय सांस रोकेंगे तो सामने वाले को लगता है कि इसकी तो सांस ही नहीं चल रही, तो इसकी जैसी मृत्यु हो गई है, और फिर मैं आऊंगा उस समय तुम्हारी माँ जो है वो नेचुरली ऐसे उसमें देख करके तुमको परेशान हो सकती है, तो मैं आऊंगा और मैं कहूंगा कि इसके प्राण आ सकते हैं लेकिन अगर कोई अपने प्राण इसकी जगह दे, फिर देखते हैं तुम्हारी माँ क्या जवाब देती है, उसको कितना प्यार है तुमसे, तो पता चल जाएगा, परीक्षा हो जाएगी। उसने कहा ठीक है मैं तैयार हूँ उसके लिए, माना मुझे तो विश्वास है कि वो मेरे से बहुत प्यार करती है। तो उसने उसको कुछ दिन वो ऐसा प्राणायाम सिखाया जिससे कि वो अपनी सांस को थोड़ा लंबे समय तक रोक ले। वो जब उसमें हो गया एक्सपर्ट तो उसने कहा कि ठीक है अभी आज तुम घर जाकर के अपनी माँ को कहना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और फिर तुम थोड़े समय के बाद ऐसा करना। तो गया घर में और उसने माँ को कहा कि माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, आराम करता हूँ। तो माँ ने कहा ठीक है बेटा क्या चाहिए तुम्हें। उसने कहा कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम मेरा ध्यान रख लेना क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब लग रही। उसके कहने का मतलब था कि थोड़ा ज्यादा ही घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है। तो माँ ने कहा ठीक है तू आराम कर मैं वहीं बैठती हूँ। तो उसने थोड़े समय के बाद अपना जैसे था गुरु का कहना उस अनुसार अपना सांस रोक लिया। तो माँ ने देखा अरे इसकी तो सांस ही नहीं चल रही है, क्या हुआ इसको। तो उसका हाथ वाथ पकड़ा तो एकदम ढीला था। तो उसने तुरंत अपनी बेटी को बुलाया, बेटी वहीं उसी गांव में रहती थी, कि देखो तुम्हारे भाई को क्या हो गया है। तो वो दोनों थोड़ा परेशान होने लगे क्या हो गया क्या हो गया। फिर वो उतने में ही वो गुरुजी आ गए तो उन्होंने कहा देखिए इसको क्या हो गया, ये रोज आपके पास आता है। तो उन्होंने कहा कि अरे हाँ सचमुच इसकी तो सांस ही नहीं चल रही। तो मेरे पास एक पुड़िया है ना, वो पुड़िया ऐसी है कि अगर इसकी जगह कोई ले लेगा वो पुड़िया, तो उसके प्राण चले जाएंगे, इसके प्राण आ जाएंगे। तो माँ को बोला उन्होंने कि आपको तो बहुत प्यार है अपने बेटे से, आप ये पुड़िया ले लो, आप तो वैसे भी अब आपकी आयु लगभग पूरी हो चुकी है और ये तो युवा है अभी। तो माँ ने बोला क्या बात करते हो, हाँ भले ही मेरी आयु ज्यादा हो चुकी है लेकिन मेरी एक बेटी भी है, अब ये तो रहा नहीं, इसकी तो सांस ही नहीं चल रही है, पर मेरी बेटी के लिए तो मुझे जीना है, तो मैं तो नहीं ले सकती। तो वो सुन रहा था, उसने तो सिर्फ सांस को रोक रखा था, बेटे ने सुन लिया कि माँ क्या जवाब दे रही है, तो माँ पुड़िया लेने के लिए तैयार नहीं। फिर उन्होंने उसकी बहन को पूछा आप ही ले लो अपने भाई के लिए, तो उसने कहा अरे मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कौन संभालेगा, मैं तो नहीं ले सकती। दोनों ने ही मना कर दिया। तो उसकी माँ कहती है गुरुजी आप ही ले लो, आप तो वैरागी हो, आप तो सन्यासी हो, आपको क्या फर्क पड़ता है अगर आप चले जाएंगे तो। उसने कहा ठीक है मैं ले लेता हूँ वो पुड़िया, तो सिर्फ वो कुछ पाउडर उन्होंने खाने वाला ही डाला हुआ था, वो उन्होंने ले लिया और वो उठ के खड़ा हो गया। लेकिन सच्चाई उसको पता चल गई कि कौन किसको कितना प्यार करता है, और फिर वो उन सन्यासी के साथ चला गया। तो कहने का भाव ये है कि हमारे ये जो भी संबंध जिनको हम समझते हैं और जिसमें हमारी मोह की रगे होती हैं, तो वो सचमुच में कोई इतना हमसे प्यार करते हैं जितना बाबा हमसे प्यार करता है। बाबा का प्यार तो निस्वार्थ प्यार है और बाबा जैसा प्यार तो दुनिया में कोई कर नहीं सकता। तो इसीलिए परमात्मा स्नेह के आगे, उस ईश्वरीय स्नेह के आगे मनुष्य आत्माओं का स्नेह क्या है, विनाशी स्नेह है, अल्पकाल का स्नेह देने वाली आत्माएं जो बदलता भी रहता है। आज वो आपको प्यार कर रही हैं, कल आपसे नफरत करने लगेंगी। आज वो आत्माएं आपको सुख दे रही हैं, कल आपको वही आत्माएं दुख भी देने लगती हैं। देते नहीं देते, बदल जाते हैं ना। आज जो आपको प्राप्ति कराते हैं कल ही वो आपसे लेने वाले भी बन जाते हैं। तो ये संबंध तो हमारे पल पल बदलते रहते हैं, लेकिन बाबा से जो हमारा संबंध है वो संबंध हमें अविनाशी प्राप्ति कराने वाला है, जन्म जन्मांतर की प्राप्ति कराने वाला है, और इसीलिए हम कहते हैं वो सर्वोच्च संबंध है हमारा। तो जब हम उस संबंध की अनुभूति में रहेंगे जो सर्व संबंध बाबा के साथ है, जब जो संबंध चाहिए यूज करो, बाबा कहता है कि आप मुझे यूज करो, जब माँ के संबंध की जरूरत है माँ के रूप में बाबा को याद कर लो, जब पिता के संबंध की जरूरत है, बाबा रोज टीचर बनकर तो हमें पढ़ाते ही हैं, मुरली सुनते हैं हम, जो वो बाबा हमें शिक्षक के रूप में पढ़ाते हैं, गुरु के रूप में रोज वरदान हमें बाबा से मिलता है, बाबा हमारे साथी हैं, साजन हैं। आज भी मुरली में बाबा ने कहा ना हम सब कौन है, शिव बाबा की चाहे भाई भी हैं, सब सीताएं हैं, आत्मा रूपी सीताएं हैं, सजनियां हैं। तो जो संबंध बिलवर्ड है बाबा हमारा, जो संबंध हम बाबा से अनुभव करना चाहें, दोस्त का संबंध वो हम अनुभव करें, तो जितना वो संबंध गहरा होगा उतने ये कर्म बंधन जो हमारे लौकिक अलौकिक संबंध के हैं वो अपने आप कटते जाएंगे। कर्मातीत बनने की सहज विधि कि जो संबंध अनुभव करना है बाबा से अनुभव करना है, बाकी सब का संबंध सिर्फ सेवा का संबंध है। बाबा ने हमें ये अमानत के रूप में दिया है, ट्रस्टी माना ही बाबा की अमानत है मेरे पास, मेरा समझना ही नहीं है, संबंध में मेरापन लाना ही नहीं है, यही नष्टो मोहा बनने की विधि है। फिर कर्मेंद्रियों का संबंध हमारे कर्म, जैसे कहा कर्म के साथ, यानी कर्मेंद्रियां हमारी जो हैं देह के साथ जो कर्मेंद्रियां हैं, तो कर्मेंद्रियों से श्रेष्ठ कर्म भी होते हैं तो विकर्म भी हो जाते हैं या व्यर्थ कर्म भी होते हैं। तो हमारी स्थूल सूक्ष्म दोनों कर्मेंद्रियां हैं, और अगर श्रेष्ठ कर्म हैं वो हमें बंधन मुक्त बनाते हैं, और वही कर्मेंद्रियां अगर विकर्म करती हैं तो फिर वो कर्म बंधन बन जाता है हमारा। तो वो हमारी चेकिंग होनी चाहिए कि मेरी कर्मेंद्रियां बाबा की श्रीमत अनुसार ही कर्म करें। बाबा की श्रीमत अनुसार कर्म करना माना कर्म बंधन मुक्त। आंखों से जो देखने की श्रीमत है, बाबा ने कहा है देखना कैसे है, बोलना कैसे है, चलना कैसे है, खाना कैसे है, सोना कैसे है, अमृत वेले से रात तक हर कर्म के लिए हमको श्रीमत मिली हुई है। तो हर कर्म उसी श्रीमत के प्रमाण चलता रहे, तो अपने आप हम श्रेष्ठ कर्म का खाता जमा कर रहे हैं, वो हमारे जमा के खाते को भाग्य को बढ़ाने वाला है। और जहां श्रीमत का उल्लंघन हुआ वो विकर्म बन जाता है। आज भी बाबा ने कहा ना, मुख से हमारे कैसे वचन निकलने चाहिए, सदा ही मुख से रतन निकलें, सदा ही मुख से सुखदायी वचन हमारे हों, सदा ही दूसरों को उमंग उत्साह में लाने वाले, प्रेरणा देने वाले, जिसको कहा सत वचन महाराज कहते हैं भक्ति में। तो बाबा ने कहा ये आपकी ही यादगार है, कभी भी किसी को श्रापित करने वाले वचन बोल मुख से ना निकले, माना ये कर्मों की बात है। तो ऐसे अगर ऐसे बोल हम बोलते हैं तो फिर वो हमारे लिए बंधन का रूप बन जाता है, बाद में हम पछताते हैं, फिर हमारे उसके ऊपर संकल्प चलते हैं, जिसको हमने बोला उसके भी व्यर्थ संकल्प हम चलवाते हैं, वो भी इस बात को फिर सोचते हैं। तो ये सोच समझ कर, या जैसे कहा त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करो, इस कर्म का परिणाम क्या होगा, जब ये स्थिति में कर्म करेंगे या साक्षी दृष्टा होकर के कर्म करेंगे, जैसे कर्म किया लेकिन जैसा हम परिणाम चाहते हैं वैसा परिणाम नहीं आया, तो क्या होता है, हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन साक्षी स्थिति में कर्म करेंगे, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कराने वाली हूँ, मैं आत्मा राजा हूँ, मैं आत्मा मालिक हूँ, अधिकारी हूँ, तो सदा ही कर्म किया वो मेरा अधिकार था। फल तो बहुत सारे कारण होते हैं जो हमारे फल को प्रभावित करने वाले होते हैं, यहाँ तक कि पूर्व जन्म के भी कारण होते हैं। तो फिर फल को हम साक्षी होकर के जो भी फल है उसको हम स्वीकार करते हैं, तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे, यानी वो कर्म हमें बंधन का रूप नहीं लगेगा। तो इस तरह से अपने कर्मों को भी हम श्रेष्ठ बनाएं। फिर है देह के पदार्थों का बंधन। आज हम साधन सुविधाएं यूज करते हैं, तो वो साधन सुविधाएं जो भी वैभव हैं वो हमें योग की स्थिति से नीचे ना ले आए। बाबा मना नहीं करता है यूज करने के लिए, यूज करो, लेकिन न्यारी और प्यारी स्थिति में रह करके अनासक्त भाव से यूज करना है, वो मुझे वशीभूत ना करे, अधीन ना बनाए कि इसके बिना तो मेरा काम चलेगा ही नहीं। ये होगा साधन तभी सेवा हो सकती है, ये साधन नहीं होगा तो सेवा भी नहीं होगी, तो हम साधनों के अधीन हो जाते हैं। साधन है तो ठीक है, अच्छा है, हम अच्छी सेवा कर पा रहे हैं, और अगर साधन नहीं है तो भी वो विघन रूप ना बने, हम जो सेवा कर सकते हैं वो अवश्य हम करें। तो कोई भी साधन को हमें पदार्थों को इस तरह से प्रयोग करना है, और है तो भी बहुत अच्छा और नहीं है तो और भी अच्छा। नहीं तो क्या होता है, उनकी इच्छाओं के पीछे ही जाते रहते हैं, एक प्राप्ति हुई फिर दूसरी शुरू हो जाएगी, दूसरी हुई फिर तीसरी शुरू हो जाएगी, ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए, तो बुद्धि कहाँ लगी हुई है, समय और शक्ति कहाँ जा रही है ज्यादा, साधन सुविधाओं में जा रही है। लेकिन आवश्यकताएं बाबा हमारी स्वतः ही पूरी करता है। बाबा कहता है अगर आप इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में हैं, आप अपनी स्व स्थिति में हैं, तो प्रकृति स्वतः ही दासी होती है। हम इच्छाओं के पीछे जाते हैं तो वो और ही पूरी नहीं होती हैं। तो बाबा अपनी हमारी आवश्यकताओं को स्वतः ही पूरा करेगा, हमें उनके पीछे नहीं जाना है। और अगर नहीं है तो भी हम संतुष्ट हैं, राजी हैं, हर स्थिति में हम राजी हैं। तो बाबा हमारे मन की स्थिति, ये बंधन मुक्त स्थिति है। और ऐसे ही प्रकृति का बंधन आ जाता है। प्रकृति माना हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों का बना हुआ है, तो शरीर, हम कभी बीमार भी होते हैं, जो भी व्याधि आती है, रोग आता है, वो मेरे मन की स्थिति को ना हिलाए। अगर तन का रोग मेरे मन में चिंतन लाता है, व्याधि का चिंतन चलता रहता है, ये हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ये कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, है ना, ऐसे संकल्पों में चले जाते हैं, तो वो दुख का रूप बन जाता है। जो चेहरा भी है वो चेहरे से वो बीमारी का दुख दिखाई देता रहता है। और फिर ना सिर्फ खुद सोचते हैं, फिर उसका वर्णन भी करते हैं, फिर जिसको समझते हैं सुनाना चाहिए उसको वो बीमारी के बारे में सुनाते भी हैं। तो बाबा कहते हैं जितना आप व्याधि के स्वरूप बनेंगे उतना वो बढ़ेगी, लेकिन उसके बंधन मुक्त होने का तरीका है, क्या तरीका है, बाबा के साथ अगर मेरा योग है तो हम कर्म भोग को कर्म योग से सहज चुक्तू कर पाते हैं। मेरी आत्मा स्वस्थ है, शरीर बीमार है, मैं आत्मा इस शरीर का हिसाब किताब चुक्तू कर रही हूं, तो बाबा की याद, बाबा की दुआएं हमें अनुभव कराती है, बाबा की शक्ति हमें मिलती रहती है और बीमारी का कष्ट हम महसूस नहीं करते, उस बीमारी को हम सहज रीति से पार कर लेते हैं। और ऐसे बाबा के बहुत से बच्चे हैं, यहां तक कि हमने दादियों को देखा, हमारे जितने भी महारथी भाई बहने हैं, हमारी दादियां हैं, सबने अपने तन के हिसाब किताब भी चुकतू किए, है ना, कर्मातीत बनना है तो ये सब यही चुकतू करके जाना है, क्योंकि ये अंतिम जन्म है, अब घर जाने का समय है। तो जितने महान आत्मा उतने ही महान हिसाब किताब भी हम देखते हैं, लेकिन कैसे उन्होंने उसको सहज रीति से चुकतू किया और ही सेवा के निमित्त बन गए। गुजार दादी का हमने देखा, दादी जी, आज हमारा जो ग्लोबल हॉस्पिटल है वो गुलजार दादी जी हॉस्पिटल में एडमिट हुई और जिन डॉक्टर ने उनका इलाज किया, दादी जी की स्थिति से उनकी सेवा हुई और वो मधुबन में आए और उनके संकल्प चले कि यहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए। फिर सभी बड़े निमित्त जो भी थे अपने खास, निर्वैर भाई ने उनकी जिम्मेवारी ली और फिर हॉस्पिटल बना। और ना सिर्फ हॉस्पिटल बना, लेकिन इतना विस्तार है अभी हॉस्पिटल की सेवाओं का कि एक बॉम्बे में उससे भी कई गुना बड़ा 7 मंजिल का अपना वहां बॉम्बे का म्यूनिसिपैलिटी का हॉस्पिटल उन्होंने ब्रह्मा कुमारी इसको दिया हुआ है। और यहां भी फिर नीचे ट्रॉमा सेंटर बना और अभी एक और नया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने की तैयारी है। तो सोचिए कहां से बीज पड़ा उसका, दादी की स्थिति ने, ना भले ही हिसाब किताब चुकतू करने के लिए हॉस्पिटल, बाबा कहते हैं हॉस्पिटल नहीं होली स्थल, क्योंकि जब हिसाब किताब चुकतू होता है तो आत्मा होली बनती है, तो बाबा उसको होली स्थल नाम देते हैं। तो वो स्थिति से जो सेवा हुई उनकी, और आज भी वो बाबा के बच्चे हैं, डॉक्टर अशोक मेहता जी आज भी वो बाबा के बच्चे हैं, रेगुलर बाबा की मुरली सुनते हैं और हॉस्पिटल की सेवाओं में भी अब तक भी वो पूरा सहयोगी हैं। हालांकि काफी आयु उनकी अभी हो चुकी है, लगभग 90 वर्ष की उनकी आयु हुई है। तो कहने का भाव ये है कि हमारी स्वस्थिति श्रेष्ठ रहती है बीमारी में, तो हम कहेंगे हम उस व्याधि के बंधन से ना, जो प्रकृति का प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़ना चाहिए उस बंधन से हम मुक्त हैं। तो जो सचमुच सच्चे योगी आत्माएं हैं वो अपनी स्थिति ऐसा ही अनुभव करती हैं कि कितनी भी गंभीर बीमारी है, कितनी भी असाध्य बीमारी है, लेकिन उस बीमारी का प्रभाव उनके मन पर नहीं होता, बीमारी का दुख उन्हें दुखी नहीं करता। और इसीलिए बाबा कहता है ये शरीर भी जाए तो कैसे जाए, दुनिया में तो लोग मृत्यु के नाम से डरते हैं और यहां पर बाबा कहता है शरीर भी जाए तो कैसे जाए, खुशी से जाए। खुशी से शरीर छोड़ेंगे तो आगे भी जो जन्म होगा एडवांस पार्टी में जाएंगे और बाबा की सेवा के निमित्त बनेंगे, क्योंकि अंत मति सो गति होती है। तो हमारा अंत कैसा होना चाहिए उसकी भी विधि बाबा ने हमें बताई हुई है, तो वही कर्मातीत स्थिति हमारी अंत में ही बनती है। फिर लास्ट में हम कहेंगे सेवा का बंधन। सेवा भी, हालांकि सेवा तो हमारा भाग्य बनाने वाली है, सेवा से तो हमें दुआएं मिलती हैं, सेवा हमें खुशी और शक्ति का अनुभव कराती है, तो क्या सेवा का भी बंधन हो सकता है? तो सेवा कब बंधन बनती है, जब सेवा में स्वार्थ आ जाता है। जितना हम निमित्त निर्माण निर्मल भाव से सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, बाबा की याद में कर्म योगी बनकर के हम सेवा करते हैं, उतना सेवा हमें कर्मातीत बनाने वाली है। जैसे बाबा ने सदा निरहंकारी बनकर के, निमित्त निर्माण बनकर के सेवा की, दादियों को भी हमने देखा, दादी प्रकाशमणि जी तो कभी मैं शब्द भी यूज नहीं करते थे, मैं ये करती हूं या मेरा ये विचार है, ये शब्द ही दादी के होते नहीं, दादी का विचार है। तो ऐसे ही वो मैंपन और मेरापन जो सेवा में भी आ जाता है ना, मैं ऐसी मेरी विशेषता है, मेरी विशेषता को समझते नहीं है, मेरी योग्यता है फिर भी मुझे चांस नहीं मिलता है, या ना दूसरे के लिए भी ऐसा सोचते हैं कि ये सेवा से मुझे नाम मान शान मिलना चाहिए या ये मिलना चाहिए, मैंने इतनी सेवा की इनको भी इतना करना चाहिए, तो ये स्वार्थ। दुनिया में भक्त भगवान के लिए करते हैं ना कुछ भी, तो इच्छा रखते हैं, जैसे कहा लेन देन का वहां हिसाब किताब करते हैं भगवान के साथ, ऐसे यहां भी कई बार हम ज्ञानी भक्त बन जाते हैं तो बाबा से भी हम कुछ कुछ डिमांड रखते हैं कि हम ये सेवा कर रहे हैं तो बाबा मेरा ऐसा होना चाहिए, कोई कोई ऐसा संकल्प करने लगते हैं। तो जब इस प्रकार से हम सेवा करते हैं तो वो सेवा बंधन का रूप हो जाती है। बाबा कहते हैं फिर वो हमारा जमा नहीं होता है, जितना हम दिल से, सच्चे दिल से, जितना हम प्यार से सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उतना हमारा फूल जमा होता है। तो सेवा में कभी भी मैंपन और मेरापन ना, मेरी ही जिम्मेवारी है, ये मेरी ही सेवा है, मेरी सेवा इसने कैसे ले ली, हाँ कई बार ऐसे भी होता है क्या कि ये भाव जाता है, तो मेरी सेवा है तो मेरी जिम्मेवारी, दूसरा कैसे कर सकता है, तो किसकी सेवा है, मेरी है बाबा की है, हाँ, या कभी कभी टीचर्स बहने हैं हमारी, मेरा सेंटर है, मेरा स्थान है, मेरे जिज्ञासु हैं, तो मेरे तेरे में जब हम आने लग जाते हैं सेवा में, है ना, मेरे एरिया में, हाँ ये क्यों क्यों आ गए, तो क्या होता है, वो सेवा सेवा नहीं फिर बंधन का रूप हो जाता है। तो कई बार सेवा में भी हम कर्म बंधन बांधने के निमित्त बन जाते हैं, लेकिन जितना हम बेहद की वृत्ति रखेंगे, हद, मैं और मेरापन हद की वृत्ति है। बाबा कहता है आप कोई एक स्थान के सेवाधारी नहीं हो, कौन हो? विश्व कल्याणकारी हो, विश्व सेवाधारी हो। तो जब ये समझ करके अपनी, जैसे शिव बाबा बेहद का है, बाबा सदा बेहद के रहे, दादियां हमारी बेहद की रही ना, सारे विश्व की आत्माओं की सेवा करने के हम निमित्त हैं। तो जब हम अपनी बेहद की वृत्ति रख करके सेवा करेंगे, निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, तो वो सेवा भी हमें कर्मातीत बनाने वाली हो जाती है। और सहज ही ये सब जो भी कर्म बंधन समय प्रति समय हमारे लिए विघ्न रूप बनते हैं, हमारी स्थिति को हलचल में लाने के निमित्त बनते हैं, या मनसा बंधन में आ जाते हैं ना, बाहर से भले कई बार दिखाई नहीं देगा, लेकिन मन में जितने व्यर्थ संकल्प विकल्प चल रहे हैं उन्हीं बातों को लेकर के, तो हमारा मन भी उन बंधनों में उलझा रहता है, उनसे हम निकल नहीं पाते। तो जितना ज्ञान का चिंतन हम करेंगे ऐसे समय पर, बाबा का ज्ञान ना, बाबा जो रोज हमें मुरली सुनाते हैं, बाबा कहते हैं केवल मनन करने की बात नहीं, स्वचिंतन करो, यानी देखो कि उस ज्ञान जो बाबा हमें ज्ञान दे रहे उसके अनुसार मेरा स्वरूप बना है कि नहीं बना, अभी तक कितनी कमी है मेरे अंदर उसके लिए। तो जो कमी है उसको उस चिंतन से दूर करो। तो जितना उस ज्ञान को यूज करते जाएंगे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। तो बाबा की ने जो हमें तीनों कालों की समझ दी है, त्रिकालदर्शी स्थिति में रह करके, साक्षी दृष्टा बन करके, और बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करते हुए, हम कर्म बंधन जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव, कर्म बंधन मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव सहज कर सकते हैं। ओम शांति।
तन का न गर्व कीजिए, ये तो विनाशी है, तू तो है चेतन आत्मा ज्योति अविनाशी है, ज्योति सागर पिता को दिल में बसा ले, दिल में बसा ले, राहों में भर जाएंगे तेरे उजाले, तेरे उजाले। कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले।